ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः सम्यक् दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म के पाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व चरण धारी केवल लहे पावे पद निर्वाण नेमी चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासौ जासते जाने निज गुण लब्धि सार को पाय कै करि कै क्षपणासार हो है प्रवचन सार सो समय सार कविता।
तीर्थंकरों की वाणी में चारों ही अनुयोगों का कथन आता है। उसमें प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग ऐसे चार अनुयोगों द्वारा यह इस विश्व का स्वरूप तथा मोक्ष मार्ग का स्वरूप, सातों तत्वों का स्वरूप ये सब बताया जाता है और जीव को ये भी बताया जाता है कि वो मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट कर सकता है। जीव की जो हमें जीव को यानी अपने को जानना है तो अनादि से ही जानने वाला तो जीव है, सबको जान रहा है परंतु अपने को नहीं जान रहा, क्योंकि मैं कौन हूं इसके बारे में उसकी बहुत भ्रमणा चलती है, कल्पनाएं चलती है, मिथ्या भ्रांति चलती है। इसलिए यहां जीवों को तो पहले में पहले संयोगों की अपेक्षा उनका ज्ञान कराया जाता है कि जीव कहां कहां रहते हैं, किन संयोगों में है, कौन कौन से शरीर के धारण किए हुए है। क्योंकि जीव द्रव्य जब कहेंगे तो जीव द्रव्य का कौन सा शरीर होता है, एक इंद्रिय के दो इंद्रिय? हाँ बोलो श्रुति। जीव द्रव्य को कौन सा शरीर होता है? हाँ हाँ, आप क्या, हाँ आप क्या कहते हैं?
एक से पांच इंद्रिय।
एक से पांच इंद्रिय, हाँ आप क्या कहते हैं? जीव द्रव्य को हमको शरीर कितने होते है देखना है? हाँ हाँ बोलो बोलो।
पांच?
नहीं नहीं, हम यहाँ द्रव्य की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं इस विश्व में छह द्रव्य है। छह द्रव्य में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये छह द्रव्य है। हम जीव द्रव्य की डेफिनेशन क्या देखते हैं? हमको द्रव्य को देखना है,
द्रव्य चेतना,
जिसमें चेतना है उसको जीव द्रव्य कहेंगे, है ना? परंतु द्रव्य किसको कहेंगे?
गुण का गुण का।
बहुत अच्छा, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो अंदर गुण है और ऊपर शरीर होगा कि नहीं होगा? एक इंद्रिय का, एक इंद्रिय का, नहीं समझा? हमें जीव द्रव्य देखना है तो सिद्ध भगवान जीव द्रव्य है ना, तो अंदर गुण पड़े और ऊपर से कोई मेम्ब्रेन, प्लास्टिक की थैली, कुछ तो होगा कि नहीं होगा?
नहीं।
गुण किसमें भरे है?
सिद्ध भगवान अरूपी है।
हाँ अरूप है तो जीव द्रव्य है ना, वे वो प्योर जीव द्रव्य है। हम भी प्योर जीव द्रव्य, जब द्रव्य की बात करेंगे तो जीव द्रव्य तो भिन्न ही है और पुद्गल द्रव्य भिन्न है। जीव द्रव्य को कोई शरीर नहीं होता, समझ में आ रहे? क्या पूछा? द्रव्य किसको कहेंगे? गुणों के समूह को द्रव्य कहेंगे। सोना किसको कहेंगे? जिसमें वो पीला से, चिकास है, जो उसकी स्पेसिफिक उसके कैरेक्टर से सोना द्रव्य नहीं है, सोना तो स्कंद है, पुद्गल है, परंतु हम उसको द्रव्य तरीके से समझाएंगे दृष्टांत के तौर पर। तो हम सोना, सोने में कोई ऊपर कुछ होता है, अंदर सोना पड़ा, ऐसा होता है कि सोना सोना है? हाँ, वैसे जीव द्रव्य कहो, कोई भी द्रव्य ले लो तो वो तो द्रव्य है, उसमें कोई ऊपर शरीर नहीं है। शरीर क्या है? वो तो पुद्गल द्रव्य है। अभी श्रुति ने बताया ना कि उसके कोई शरीर नहीं है, ऐसा क्यों कहा? शरीर कौन सा द्रव्य है बहन? पुद्गल द्रव्य है, तो वो भिन्न द्रव्य है। हम संसारी जीवों की बात नहीं कर रहे हैं। जब कहें ये मनुष्य जीव है, ये एकेंद्रीय जीव है, द्विंद्रीय, वो तो उपचार कथन है, अन्य द्रव्यों के साथ मिली हुई अवस्था है, वो जीव द्रव्य नहीं है। उसको हम कहेंगे ये सारे जीव है, कौन से जीव है? संसारी। तो हम कहेंगे कर्म से सहित है, शरीर से सहित है, शरीर सहित है, शरीर उनका द्रव्य का स्वरूप नहीं है, क्योंकि शरीर ये भिन्न द्रव्य है। हमने देखा था जहां मैं स्वयं जीव हूं उसी क्षेत्र में उसके सारे कर्म परमाणु पड़े हुए हैं, हम उसके कहेंगे क्योंकि उसके निमित्त से बंधे हुए हैं, परंतु कर्म भिन्न द्रव्य है। उसी प्रदेशों में औदारिक शरीर के अनंत परमाणु पड़े हैं, उनका कैसा संबंध है? हाँ, आप बोलेगी मैं एक जीव हूं और यहाँ अनंत पुद्गल परमाणु है, कैसे? तेजस शरीर के है, कार्बन शरीर के है, औदारिक शरीर के, इनका आपस में कौन सा संबंध है? हाँ बरोबर। हाँ आप क्या कहते हैं? अभी आई सुनानी। अच्छा, कौन सा संबंध बोला उनका, कौन सा संबंध है? हाँ ज्योति बहन बोला।
तादात्म्य एक क्षेत्र,
दोनों नहीं हो सकते ना, एक कोई तो होगा। हमने क्या पूछा? जीव का और कर्मों का कैसा संबंध है? तादात में कहेंगे तो जीव और पुद्गल एक में खो जाए, ऐसा कभी नहीं होता।
एक क्षेत्र
होगा, क्यों? जिस आकाश के यानी जिस स्पेस में मैं स्वयं जीव हूं, उसी स्पेस में एक कर्म पुद्गल परमाणु इस सुपर इम्पोज है, वहां पर वहां रहते हैं, एक दूसरे में घुस नहीं सकते। एक क्षेत्रावगाह संबंध जहां है, दो भिन्न भिन्न द्रव्य एक ही स्पेस में रहते हैं, बिल्कुल जैसे हम इस एक ही रूम में एक ट्यूबलाइट का प्रकाश यहीं फैला हुआ है, दूसरा का भी उसी में फैला हुआ, दोनों ने ऐसा एक क्षेत्र में व्याप्त है वो, फिर भी दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न है। एक कांच का गोला है या क्यू है कोई, और उसमें से हम लाइट पास किया, तो जहां कांच का गोला है उसी स्पेस में लाइट है ना, तो वो एक में खो गए कि भिन्न है?
भिन्न है,
क्योंकि हमने वो बैटरी ऑन कर दी तो अंदर आ गए और उसको ऑफ कर दिया तो वहां लाइट नहीं है, इट्स नो मोर। तो वो भिन्न तो है, एक ही क्षेत्र में रहते हुए दो पुद्गल भिन्न भिन्न है। हमने एक कटोरी में वो भस्म राख ली, एक कटोरी में पानी रखा, और वो पानी वाले कटोरी में अभी इतना छलो छल भर दिया, उसमें भी कुछ स्पेस नहीं है, उसमें हमने वो राख डाली तो उसमें समा गई। तो कटोरी जितने स्पेस में जिसमें राख थी, पानी था, उतने ही क्षेत्र में राख भी आ गई, तो वो एक में एक नहीं हुए, उनका अस्तित्व तब भी भिन्न भिन्न है। पानी भिन्न है, राख भिन्न है, उसमें आप पिंस या नीडल्स कुछ अंदर फंसा दो तो उतने ही क्षेत्र में वो भी समा जाएगी। इसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाही संबंध। संबंध ही बात सूचित करता है कि वहां दो भिन्न चीजें है, नहीं तो एक में हो जाती। जीव और पुद्गल अनादि से एक साथ एक क्षेत्र में रहते हुए भी कभी भी एक में नहीं हुए। जीव हमेशा जीव रूप ही रह गया है, जीव द्रव्य, और पुद्गल हमेशा पुद्गल द्रव्य रूप ही रह गया है। क्यों? कल शाम को देखा था ना,
एक में एक नहीं होते इसलिए तो अलग हो सकते हैं ना?
बिल्कुल, क्यों एक में क्यों नहीं हो सकते? कल आपने देखा था रात के प्रवचन में, सिद्धांत प्रवेशिका में सीखा था आपने, क्या सीखा था? दोनों के ये भिन्न भिन्न है, क्या क्या? क्या? हाँ हाँ हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। यहाँ मैं स्वयं हूँ जीव द्रव्य, मेरा द्रव्य, मेरा क्षेत्र, मेरा काल और मेरा भाव, मेरे में। और यहाँ इतने अनंत पुद्गल परमाणु है, हर एक परमाणु का अपना अपना, हर एक का हो, एक एक पुद्गल परमाणु का अपना अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव भिन्न भिन्न है। एक ही क्षेत्र में रहते हुए भी वो कभी एक में एक रूप हुए ही नहीं है। पुद्गल से हमने, ये पर्याय से हमने कहा था तादात्म्य, एक समय के लिए तादात्म्य उस रूप, क्योंकि द्रव्य उस अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य पूरा ही उस रूप परिणमित होता है। परंतु यहाँ जीव कभी भी कर्म रूप हुआ ही नहीं अनादिकाल से। शरीर और हम एक साथ बंधे हुए हैं, तो शरीर का थोड़ा गुण जीव ले ले, जीव का गुण थोड़ा शरीर ले ले, होगा कि नहीं? पुद्गल थोड़ा तो जानने का कार्य करेगा कि नहीं? तो ब्रेन से जानते कि हार्ट से? ब्रेन से। हाँ, ब्रेन क्या है, दिखाई देता है कि नहीं? देखा,
ऑपरेशन करते हैं
दिखाई देता है, ऑटोप्सी करने पर भी रह जाता है ब्रेन यहाँ पर ही। ब्रेन, वो मेंदू कहते हैं ना, वो तो यही रह जाता है, अर्जुन निकल जाता है। तो ब्रेन क्या है, कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। तो जीव के साथ रहते रहते थोड़ा जानने का कार्य करेगा कि नहीं करेगा ब्रेन? यही, इसको ही कहते तत्व विचार और तत्व निर्णय। अपने बुद्धि, ये तो आसान है कि नहीं? बच्चों का खेल है। क्यों? जानने का कार्य कौन करता है? जीव। और ये ब्रेन कहो, ये सारे जो कोई नर्वस सिस्टम है, वो क्या है? पुद्गल है, दिखाई देती है, है ना? ये तो यही रही जाती है, ये तो यंत्र है। जैसे आपके कंप्यूटर में कोई कनेक्शन है, वैसे यहाँ के कनेक्शन से उसमें कोई चेतनत्व नहीं है, वो जड़ है, वो कभी एक दूसरे रूप होते ही नहीं है। तो यहाँ फिर भी, यहाँ जो जीव और कर्म का जो संयोग होता है, संयोग है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है, और वो संबंध उसी को कहते जहां दो भिन्न चीजें हैं। भिन्न है तो भिन्न हो सकती है। अब हमें जीव अरूपी है, अनादि से जीव को अपने वो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, इसलिए उसको संयोगों की अपेक्षा समझाया जाता है। फिर हम कहेंगे इतने इंद्रिय वाला जीव है, परंतु जीव द्रव्य कहेंगे तो उसके ना कोई इंद्रिया है, जीव द्रव्य को ना कोई शरीर है, जीव द्रव्य को ना कोई कर्म है। हम द्रव्य की बात कर रहे हैं। द्रव्य उसे कहेंगे कि गुण पर्यवत द्रव्य, जो अपना अभी आपकी बात चलेगी और सिद्धांत ऋषि, सभी अनुयोग एक दूसरे से मिलते हुए, कहीं कोई ऐसा कंपार्टमेंट नहीं है, और सभी अनुयोगों का प्रयोजन अपने आप को जानने का है। ये हमें निर्णय करना है, क्योंकि लौकिक में हम कुछ ऐसे ही अंदाज से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और वही भाषा यहाँ आती है तो हमारा बहुत कंफ्यूजन होता है, और लगता है ये बहुत हाई लेवल की बात नहीं, ये तो बेस है, जैनिज्म का बेस है द्रव्य गुण पर्याय, ये लोएस्ट है लेवल। क्यों? हमने सुनी नहीं, इसलिए हाई लेवल लगती है। अरे दो चार बार और सुन लो तो ये कितना इजी ऐसा लगेगा। देखो, हम बाजार में से वो कोरा घड़ा लाते ना, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा लाते हैं और उस पर ड्रॉप्स पानी के, पानी की बूंदे गिराएंगे, एक बूंद गिरी तो भी वो ड्राई दिखता है, दो बूंद गिरी, तीन बूंद, चार गिरी, अरे 200 बूंद गिराए तो भी वो कैसा सूखा का सूखा दिख रहा है। हम तो भिगो के रखते हैं ना मटका लाने पर, तो फिर एक 201 नंबर की बूंद गिरी तो गीला दिखाई दिया। तो पहले सभी बूंदों में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ गीलेपन का?
हुआ।
हम कहेंगे 201 नंबर की बूंद पहले डालनी थी ना, उससे कार्य हुआ ना, तो उसको हम पहले कहते हैं, उसको 201 नंबर की थोड़ी, ऐसी कोई उस बूंद में थोड़ी कुछ जादू है कि उससे हुआ और पहले बूंदों में नहीं हुआ। तो वहां भी, वहां कुछ ना कुछ एब्सॉर्प्शन हुआ है। वैसे ही कोई भी बात हम पहली बार सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, ये हमें, हम बार बार सुनते हैं तो उसको समझ में आता है। आपके, हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, कौन सी भाषा में पैदा होते हैं, उनके साथ कौन सी भाषा में बोलना चाहिए?
प्रेम की भाषा।
प्रेम की भाषा, प्रेम की भाषा। क्या क्या प्रेम करते हैं हम, बच्चा जन्मता है कुछ नहीं समझ रहा है, पहले की कोई लैंग्वेज लेके नहीं आया है, हम उसके साथ कितनी बातें बताते हैं, हाँ वो सब राजा बेटा को सब कुछ सुना देते, वो उसकी बारात भी ले आते हैं, हाँ। कौन कौन आएगा, क्या हाथी झूलेंगे, क्या क्या वो सब, हाँ वो भले एक्चुअल में हो नहीं हो, तो वो छोटे बच्चे के साथ हम इतनी बातें करते हैं कि 6-8 महीने वो बच्चा भी बोलना सीख जाता है। एक बार ऐसा ही हुआ, हमारे कोई बेटा नहीं है, हमने सोचा कि एक बेटा गोद ले ले, हम गए ऑर्फनेज में, तो वहां बहुत सारे बच्चे देखे, तो एक प्यारा सा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट दिखाई दे रहा था, तो हमने सोचा इसको ले लेंगे गोद, 2 महीने का था, तो हमने सब वहां पूछताछ की, तो मद्रासी बच्चा था, तो हम दोनों ने विचार किया अभी तो ये मद्रासी बच्चा है क्या करे, तो थोड़े रुके 4-6 महीने, हम पहले मद्रासी सीख ले फिर इस बच्चे को गोद ले ले, बराबर है ना, नहीं अरे भाई इसका वास्ते क्यों नहीं, और फिर उसके उसको कैसे समझेगी हमारी मराठी या गुजराती,
उसके पास तो एक भी लैंग्वेज थी नहीं,
थी नहीं, जो हम बोले वो सीखेगा ना, हाँ तो मद्रासी बाप का है या बहन का है, इसलिए थोड़ा ही वो मद्रासी है, वो जो भाषा हम बोलेंगे वो सीख जाए, वैसे ही हमारा कोई गोद लेने का विचार नहीं था, हाँ, हाँ। पूना में हम जाते थे बहुत बार शिविर, ऐसे 10-10 दिन हर 2 महीने में जाते थे, वहां जब हमने ये कथा सुनाई तो प्रवचन के बाद एक बहन आ गई हमारे रूम में, पूछते वो मद्रासी बेटे का क्या हुआ, यहाँ तो प्रयोजन है कि स्वाध्याय की भाषा हमारे लिए अभी नहीं लगती है, कुछ शब्द हमने नहीं सुने हैं, बार बार सुनते तो उसके अर्थ भी भाषित होते, बहुत आसान है, पहली बार सुना है इसलिए हमें ये डिफिकल्ट लगता है, हमें आपकी वो कंप्यूटर की भाषा नहीं आती, वो माउस क्या होता है, विंडो क्या होती है, फायर क्या होता है, उसको बर्न क्या होता है, कुछ नहीं समझते, तो ये ऐसी भाषा है, तो हम देखते हैं यहाँ, हमने कल देखना शुरू किया था कि यहाँ पहले में पहले जीव को जानना है, अनादि से जीव ने अपने को ही नहीं जाना है, तो फिर उसको संयोगों की अपेक्षा जीवों का ज्ञान कराया जाता है, देखो ये भी जीव है, ये भी जीव है, ये भी जीव है, यहाँ जो देहधारी है वो जीव है, इतनी इंद्रियों वाले है वो जीव है, इतने कषाय वाले है वो जीव है, इस तरह से उसको ज्ञान कराया जाता है, परंतु जीव द्रव्य और उसका जो स्वरूप है वो भिन्न है, और यहाँ संयोग में उसके पुद्गल है, पुद्गलों के संयोग सहित जो उसकी अवस्था हो रही है, जैसे मनुष्य 3 इंच देवनार की, उनका स्वरूप भिन्न है, फिर भी पहले में पहले उनको पहचानेंगे, फिर उसके द्वारा जीवों की पहचान करेंगे, तो यहाँ यहाँ एक नाम लिखा है जीव समास, कल हमने देखा था कि जीव की 20 प्ररूपणाएं 20 अलग अलग प्रकार से जीव का कथन आता है, उसमें हमने पहला नाम देखा था गुणस्थान, कि 14 गुण ये जीव संसारी जीव है ना, उनके 14 भेदों द्वारा उनके गुणस्थान बताए जाते हैं, और दूसरा नाम है मार्गणास्थान, मार्गणास्थान में 14 तो मार्गणा है और 5 अन्य व्याख्यान यानी प्ररूपणा है, वो अन्य में एक नाम है जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, उसमें से जीव समास की बात हम देखेंगे, ये जीवों को इस तरह से ये 20 अंगों द्वारा सर्वांगीण उसका स्वरूप जानकर फिर हमें अपने शुद्धात्मा का अनुभव करना है, यदि इनके बारे में हमारा कोई कंफ्यूजन हो, जीव देह में नहीं रहता है या देह के किसी संभी अंग में नहीं रहता है, कोई कहते अंगूठे में ही रहता है, कोई कहते देह के बाहर कहीं पिंजरे में तोता है उसमें उसकी जान रहती है, या ऐसे जो कोई अन्य मति की भ्रांत कल्पना है, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है, तो हम इसको देखेंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो ज्ञान है वो सही ज्ञान होना चाहिए, पहले में पहले आवश्यक कंडीशन है, इस सही ज्ञान के बाद फिर हम अपने शुद्धात्मा का अनुभव कर सकते हैं, जिनेन्द्र भगवान ने केवल ज्ञान द्वारा ये सारी बातें प्रत्यक्ष जानी है और जानकर कथन किया है, उस कथन के अनुसार गणधर देव ने अंगों की रचना की 12 अंगों की, और ये ग्रंथ आगम यानी वो कंटिन्यूएशन में हमारे पास आए हैं, उसके द्वारा हम भी उतना जानते हैं जो केवल ज्ञानी ने जाना। तो अब हम यहाँ देखेंगे ये जीव समास जो है, जीव समास ने जीवों के ग्रुप्स हम बनाएंगे। कल हमने मार्गणाओं में भी बनाए थे अलग अलग क्राइटेरिया लगा के, तो ये जो अलग अलग क्राइटेरिया से हमने देखे थे इसमें भी देखेंगे हम बाद में पुस्तक में जीव समास वाला ये 116 नंबर का प्रकरण था। यहाँ हम 119 पेज पर आए थे,
उधर रखे ले लो
वो ट्रे में
है। लाल कलर का बॉक्स पांच है, एमा 11 या पांच में क्या हो जाते ले दीजिए।
हाँ हम देखते हैं। हाँ
मार्गणा का भी इसी चैप्टर में
है, मार्गणा इसी में आगे है। कल हमने रात के प्रवचन में मार्गणा पर चर्चा की थी
116 से,
116 में जीव समास है,
मार्गणा अगले
उसके आगे आगे है। नेक्स्ट नेक्स्ट
गुजरात में,
गुजरात में आगे है। हाँ उसके बाद है हिंदी वाला अगला, गुजराती वाला उल्टा होता है, अगले पिछले होता है। मार्गणा हम बाद में देखेंगे, अभी तो ये सब अन्य जो प्ररूपणा है जीव समास पर्याप्ति प्राण उसकी चर्चा करेंगे। कल हमने 116 नंबर गुजराती में पढ़ना शुरू किया था, आगे के पेज पर हम आए हैं। देखो क्या कहते हैं, हमने कल देखा था कि हम अभी है वर्तमान में, इसका अर्थ हम पूर्व में भी थे, अभी मनुष्य पर्याय में है। हम अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, अपन 117 पर मैं आऊंगी। तो हम अभी है तो पूर्व में भी थे, तो अनादि से हमारा अस्तित्व है, तो है तो किसी न किसी भव में किसी न किसी पर्याय में जन्म मरण करते करते आज हम मनुष्य पर्याय में आए हुए हैं। तो हम कहाँ कहाँ भटक के आए हैं ये हमारी पास्ट हिस्ट्री अब देख रहे हैं, या वर्तमान में अन्य जीव किस किस पर्याय में है उसको भी देखेंगे हम, उसको भी हम कहेंगे इनके इतने भेद है। तो जीवों के भेद करना है, उनके कुछ अलग अलग ग्रुप्स करना है, तो ग्रुप्स करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कोई कॉमन फैक्टर होगा उसके आधार से हम उसके ग्रुप बनाएंगे। जैसे मार्गणाओं में भी हमने क्राइटेरिया लगाए थे, गति की अपेक्षा भेद किए थे, फिर इंद्रियों की अपेक्षा भेद किए थे, उसके पश्चात हमने काया शरीर के आधार से भेद किए थे, जो योग है वेद है कषाय है ज्ञान है, ये तो मार्गणा कहलाती है। उसकी तो बाद हम विस्तार से बाद में देखेंगे, कल एक घंटे में हमने थोड़ा देखा था उसका। अब यहाँ जो जीव समास है ये देखने की क्यों जरूरत है, तो हम 117 पृष्ठ आपका जो है वहां देखते हैं। हे जीव, क्या इस भवभव में भटकने से, इस भ्रमण से तू अभी तक व्यथित नहीं हुआ, यानी दुखी नहीं हुआ? अनादिकाल से मोह निद्रा में तू निद्रिस्त है, सोया हुआ है। जाग भैया जाग, अब तो तेरे जागने का समय आया है। आज तक तू कहाँ कहाँ जन्म मरण करके आया है सुन तो सही, हमने कौन कौन सी पर्याय में जन्म धारण किया है, कैसी कैसी वहाँ अवस्थाएं थी, कितने कितने देह धारण किए, कितने छोटे मोटे साइज थे, कौन कौन सी योनियों में जन्म लिया है, ये सब बातें अब यहाँ बताएंगे। हे जीव, जब तक प्राप्त शरीर से, प्राप्त शरीर यानी वर्तमान का जो शरीर है उससे भिन्न स्वयं का स्वरूप तू नहीं पहचानेगा, स्वयं का विश्वास श्रद्धा जिसको कहेंगे, स्वयं का ज्ञान यानी आत्मज्ञान और स्वयं में एकाग्रता जिसको हम चारित्र कहते हैं, रमणता चरणा, आत्मा में चरणा चारित्र है, शरीर की क्रिया चारित्र नहीं है। क्यों नहीं, उसका जवाब आएगा उनके प्रवचन में। उजाला आ गया ना, नहीं तो यहाँ बहुत अंधेरा फैल जाता है। तो कहते हैं जब तक अपने आत्मा को नहीं पहचानेंगे, आत्मानुभव नहीं करेंगे, तब अन्य अन्य शरीरों का संयोग होता ही रहेगा और तू ऐसा ही भटकता रहेगा। तेरे शुभाशुभ भावों के फल स्वरूप, शुभ और अशुभ दोनों लिए हो, पुण्य और पाप भावों के फल स्वरूप तू चार गतियों में भटकता रहेगा, जो हम अनादि से करते आए हैं। हम अभी पंचम काल में जन्मे हैं, तो यहाँ पंचम काल का मनुष्य जो कर्म भूमि का हमारे यहाँ का है, जन्म से कोई भी समय दृष्टि हो ही नहीं सकता, ये गारंटी के साथ नियम है करना नियोग का। क्या कहा? यहाँ अभी पंचम काल में जन्मने वाले कोई भी मनुष्य तो तिरंज तो नहीं है, तो जन्म से सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। यहाँ उत्पन्न होने के पश्चात अभी आठवें साल के बाद कोई यहाँ सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष दोनों ही सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। तो हम मिथ्यात्व में यहाँ जन्मे हैं,
तो पंचम काल है इसलिए आगे से लेके नहीं आता है।
हाँ, यह ऐसे कुछ नियम होते ना। अभी यहाँ जो विदेह क्षेत्र में है, सम्यक्त्व के साथ भी वहाँ कोई जन्मेंगे या मिथ्यात्व में भी जन्म सकते हैं, परंतु सम्यक्त्व के साथ मनुष्य भव में जो उत्पन्न होता है वो देव से मनुष्य में आने वाले होंगे या नरक से सम्य दृष्टि मनुष्य में आने वाले होंगे, तो वो तो नियम से जहाँ चौथा काल चलता है
वहीं जाते।
अब यहाँ का कोई सम्य दृष्टि मरकर वो तो दोबारा यहाँ आएगा कि नहीं पंचम काल में?
नहीं।
तो नहीं आ सकता। क्यों? वो तो देव में जाएगा, या जिसने मनुष्यायु बांधने के पश्चात सम्यक तो प्राप्त किया है, यदि वो क्षायिक सम्य दृष्टि हो तो ही भोग भूमि का मनुष्य होगा, नॉट अदरवाइज। हाँ, तो यहाँ से जो कोई सम्य दर्शन जिसने प्राप्त किया है और वो सम्य दर्शन प्राप्त करने के पहले जिसने मनुष्य आयु बांधी है, अभी पंचम काल में तो कोई क्षायिक नहीं होता, तो वो मरने के पहले मिथ्यात्व में जाकर कहीं का भी मनुष्य हो सकता है, विदेह का भी होगा। कल आपने बात की थी, हम महाविदेह में जाएंगे, तब ये बात उठाई थी। तो महाविदेह में भी छह खंड होते हो, एक आर्य खंड होता है, पांच म्लेंच खंड होते हैं। महाविदेह में जन्म हुआ और म्लेंच में उत्पन्न हुए तो ये हमारे कहने से कहीं उत्पन्न नहीं हो सकते, कहीं उत्पन्न होने की इच्छा और कुछ उसको निदान कहते हैं,
निदान बंद
होता है वो। इसकी बात आएगी कभी। अब यहाँ तो ये कहते हैं कि हमारे पुण्य या पाप परिणामों के कारण हम भटक रहे हैं। जीव अनंत है, उनमें से बहुत से अल्प सजीवों को, ये सजीव कहा, हम जो मनुष्य है वो सजीव है, सजीव प्राणी कहते ना, सजीव जीव सहित, वहां शरीर भी है और जीव भी है, उसको सजीव कहा। देखो जीव को क्या कहते हैं? सशरीरी। और शरीर को क्या कहेंगे? सजीव, है ना? क्योंकि हम कहते ना ये सारे सजीव प्राणी हैं। कौन कौन है? तो ये बिल्ली है, कुत्ता है, ये गधा है, ये आदमी है, ये कैसे सजीव प्राणी। हम शरीरों के द्वारा वो जीव की पहचान कर, सजीव जीव सहित। और जीव को क्या कहेंगे? जब तक अरियंत भगवान है, एक पहले गुणस्थान से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक के जीव कैसे कहेंगे? सशरीरी। और सिद्धों को क्या कहेंगे? अशरीरी, उनके कोई शरीर नहीं। तो यहां कहते ये जीवों की जो पर्याय है, हम थोड़े ही जीवों को जानते हैं, कितने कितने तिरंजे देखे तो हम गिने चुने बताएंगे, है ना? केवल ज्ञानी के अलावा अन्य कोई भी इन सभी जीवों का या उनकी पर्यायों का स्पष्ट ज्ञान कर नहीं सकते। ये एक इंद्रियों के इतने भेद हो गए, ये पृथ्वी का एक आदि सारे जीव है, हमें थोड़ी पता चलता है कि जमीन की ओर देख करके यहाँ पृथ्वी का एक जीव है, उनकी संख्या का थोड़ा ही पता है, उनके आकार का तो पता नहीं चलता है। ये सब किसने जाना है? केवली भगवान ने। सर्वज्ञ भगवंतों ने स्वयं प्रत्यक्ष जानकर जीवों की अनेक प्रकार की मेनी टाइप्स, उसके योनि और जाति का वर्णन किया है। अब ये योनि क्या है, जाति क्या है, उसको देखेंगे अभी हम। समस्त संसारी जीवों का किसी विवक्षित समान धर्म की अपेक्षा, क्या कहते हैं, यहाँ सभी संसारी जीवों का क्लासिफिकेशन चलेगा। तो व्हेन यू डू एनी क्लासिफिकेशन, उसमें क्या कहते हैं, हम कोई विशिष्ट कॉमन फैक्टर के द्वारा हम उसके ग्रुप्स बनाएंगे। विवक्षित यानी पर्टिकुलर, समान धर्म यानी कॉमन, उनके जो कोई कैरेक्टर्स होंगे तो उस कॉमन कैरेक्टर्स के आधार पर हम उनका विभाजन यानी डिविजन क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। जैसे अभी हम आपको पूछेंगे तत्वार सूत्र में आपने पढ़ा है उपयोगो लक्षणम, कौन से द्रव्य का लक्षण है? जीव द्रव्य। तो हम कहेंगे उपयोग जिसमें है ये लक्षण हमें बनाया, तो उपयोग के आधार से हमें उसमें चेतना उपयोग लेना है, ज्ञान दर्शन उपयोग नहीं लेना है, चेतना उपयोग। उसके आधार से सभी जो जीव है उनके हमें कितने ग्रुप्स बनेंगे? हाँ बोलो बे, क्राइटेरिया क्या है? उपयोग, यानी चेतना उपयोग। तो चेतना उपयोग के द्वारा हम जीवों के कितने भेद कर सकते हैं? हाँ, 84 लाख अलग अलग उपयोग होगे क्या उसमें? एक कहते हैं आप, पांच कौन से भेद कहते हैं?
एक इंद्रिय
ने, वो इंद्रियों की अपेक्षा है। एक इंद्रिय जीव भी जानते हैं ना, वो भी चेतना वाले हैं। तो चेतना वाले एक ही, उसमें कोई भेद नहीं होगा। तो उपयोग ही अपने क्राइटेरिया लगे तो उसमें कोई भेद नहीं, ये बात क्या? अब हम कहेंगे कोई संसारी और कोई मुक्त है, तो कर्म रहित और कर्म सहित वाली अपेक्षा लगाएंगे तो दो भेद हो जाएंगे। अभी संसारी जीवों में ही हमको भेद करना है। कल हमने देखा था स्थावर और त्रस, ऐसे हम दो भेद करेंगे। या एक इंद्रिय द्विंद्रिय, एक इंद्रिय है, कोई विकलेन्द्रिय है और कोई पंचेन्द्रिय है। ये विकलेन्द्रिय किसको कहते हैं मालूम है आपको? नहीं मालूम। हाँ, एक इंद्रिय ने यूनिसेंसरी, हाँ, और पंचेन्द्रिय ने जिनको पांच है सेंसेस, पंचेन्द्रिय। इनके इन बिटवीन कितने हैं? द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। सभी इंद्रिय नहीं, इसलिए उसको कहते हैं विकलेन्द्रिय, विकलत्रय भी कहते हैं इनको। आपने सुना होगा ना कि नहीं सुना? हाँ, नहीं सुना। विकलेन्द्रिय नाम सुना है कि नहीं? देखो, एक है एकेन्द्रिय, ये तीनों को कहा विकलेन्द्रिय, और ये पंचेन्द्रिय। कितने भेद किए हमने संसारी जीवों के? तीन भेद किए। अभी ऐसे अलग अलग भेद का हम कभी चार कर सकते हैं? पांच है। इंद्रियों की अपेक्षा हम पांच भेद करेंगे, षटकाई की अपेक्षा छह भेद करेंगे। ऐसे हम अलग अलग अपेक्षाओं से उसको कहेंगे स्थान। उपयोग की अपेक्षा एक ही स्थान, यानी वेरिएशंस। स्थान का अर्थ है वेरिएशंस, एक ही वेरिएशन होगा।
विकल शब्द का अर्थ क्या है?
विकल यानी पूर्ण नहीं, वो विकल कहेंगे। जिसकी
सकल पूर्ण नहीं है वो विकल है।
एक है सकल इंद्रिय और एक है विकल इंद्रिय।
तो एक इंद्रिय को भी
नहीं, एक इंद्रिय को अलग ही रखा है, एक ही इंद्रिय वाला, और इनके अधूरे हैं। एक इंद्रिय भी अधूरा है, परंतु इन तीनों को इकट्ठा लेते हैं, विकल इंद्रिय को।
अभी तक तो हम ये समझते थे कि विकल इंद्रिय इसको जिसको कोई डिसेबिलिटी है,
वो विकलांग कहते हैं उसको। विकलांग, विकलांग, हाँ बराबर है। शब्द तो ऐसे ही आया ना, जैसे किसी को पोलियो हुआ है तो हम क्या कहते हैं? ये विकलांग है।
अच्छा, जिसके अंग,
अंग जो है, अंग उपांग जो है उसमें कोई डिफॉर्मिटी है तो उसको हम विकलांग कहते हैं, और यहाँ विकलत्र या विकल इंद्रिय कहते हैं।
सूक्ष्म जीव जो है, उसको भी उपयोग है।
हाँ, आपका प्रश्न है एक इंद्रियों में जो सूक्ष्म जीव है क्या उनके भी उपयोग है कि नहीं है? हाँ है, क्योंकि जानना देखना ये जीव का लक्षण है। एक इंद्रिय में हुए फिर भी उनको स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान चल रहा है। एक स्पर्शन इंद्रिय है उनकी और उस संबंधी ज्ञान चलता है। कुछ प्रश्न है?
नहीं, हाँ, मेरे को ये समझना है, जिसको एक इंद्रिय है उसको स्पर्श का ज्ञान है,
हाँ,
जिसको दो है उसको कौन कौन सा ज्ञान है?
हाँ, आपका ऐसा प्रश्न है, जिसको हाँ इंद्रिय मार्गणा में आएगी, हाँ, तो जिसको एक इंद्रिय उसको एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय जो पूरे शरीर में है, दो इंद्रिय वाले उसी ऑर्डर से होगी जो हम स्पर्शन रसना याद करते ना, स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय। दो होगी तो यही दो होगी, और ये तीन होगी तो यही तीन होगी, चार होगी तो यही चार होगी, और पांच होगी तो यही पांच होगी, है ना? एक के बाद एक, जिस ऑर्डर से हम याद करते हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। हाँ, श्रोत्र इंद्रिय कहो, कर्ण इंद्रिय कहो, एक ही बात है। श्रोत्र कहते कर्ण को, हाँ, देयर ऑल सेंसेस, या जस्ट फॉर टीचिंग से फॉर चिल्ड्रेन और न्यू पीपल वी टीच लाइक दिस, दिस इज वन, नॉट दिस, इट्स नॉट ओनली हियर, इट्स ऑल ओवर,
इट्स टच,
टच सेंसेशन, टच
साइट एंड लिस्ट हियर।
टच में वो टच टेम्परेचर वो सब आएगा उसमें। अब हम देखते हैं यहाँ ये जो हमने देखा था ना ये स्थान किसको कहेंगे, जैसे एक भेद किया, दो भेद किए, तीन भेद किए, चार भेद किए, पांच भेद किए, इसको कहेंगे स्थान। अब हम कॉमनली जो यहाँ देखने जा रहे हैं वो 14 स्थान हम देखने जा रहे हैं। वो 14 कौन है वो देखेंगे। उसके पहले यहाँ हमने स्थान तो देखे, योनि के भेद, योनि जन्म स्थान को कहते हैं, जहां जीव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं योनि। अब उसके अलग अलग यानी वो पुद्गल के स्कंद वगैरह वहां होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं उसके आधार से उसको योनि कहते हैं। उसके डिटेल में तो हमें नहीं जाना है, इतना ही हमें देखना है कि वहां जो कोई शीत योनि होती है, कोई उष्ण होती है, कोई शीतोष्ण होती है, कोई संवृत यानी ढकी हुई है, कोई विवृत यानी खुली हुई है, कोई संवृत विवृत होती है। वैसे ही वहां पर कोई मिश्र की बात की ना, शीत संवृत और तीसरी कौन सी रहेगी, जिसको हम कहते हैं ना 84 लाख योनि, इसी के कॉम्बिनेशन हो जाए अचित्त और सचित्त। देखो हमने कौन कौन सी देखी, हमने 9 देखी, अभी फिर से बताती हूँ। एक है शीत, एक है उष्ण और एक मिश्र यानी शीतोष्ण, एक है संवृत ढकी हुई, एक है विवृत और एक मिश्र, दोनों का कॉम्बिनेशन। तीसरा ग्रुप कैसा है, सचित्त अचित्त और मिश्र। सचित्त ने जहां ऑलरेडी जीव रहते हैं ऐसे स्थान में नए जीव आकर उत्पन्न होते हैं उसको कहेंगे सचित्त योनि। जैसे वनस्पति है वहां पर और उसमें जाकर और जीव उत्पन्न होते हैं, निगोद वगैरह उत्पन्न होते हैं ना प्रतिष्ठित वनस्पति के शरीर के आधार से, या यहाँ मांस के आधार से और जीव उत्पन्न होते हैं उसको कहेंगे सचित्त योनि। कोई होती है अचित्त योनि, जैसे देवनार के उत्पन्न होते हैं अचित्त योनि है, और कोई होती है मिश्र योनि। उसके डिटेल में नहीं जाना हमें, ये जो 9 है भेद उसके और कॉम्बिनेशन होते हैं तो हम कहेंगे 84 लाख योनि होती है। फिर मनुष्यों के कितनी है, त्यों की कितनी है, वो अलग अलग एक इंद्रियों की कितनी है, उसकी संख्या शास्त्र में तो बताई है। अपना विषय वो नहीं है क्योंकि इतने डिटेल में जाने से हमारा जीव समास भी पूरा नहीं होगा 10 दिन में। उसकी बहुत विस्तार से चर्चा है, ये जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका पुस्तक अभी है पंडित टोडरमल जी ने लिखी, ये मूल में ग्रंथ गोमठ सार लिखा है नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने, कब 1000 वर्ष पहले लिखा था। उन्होंने कैसे लिखा तो कषाय पाहुड़ वगैरह चूर्णी सूत्र आदि बड़े बड़े ग्रंथों के आधार से उन्होंने लिखा था। वो ग्रंथ कहाँ से आए तो ओरिजिनल जो कोई सूत्र चले आए थे मौखिक ऐसे उसके आधार से वो ग्रंथ बने थे। अब उनको चामुंड राय नाम सुना था आपने ना? ये श्रवण देलगोला में वो बड़ी मूर्ति है ना बाहुबली की, उनको बनाने वाले, तो उन्होंने इस ग्रंथ की टीका लिखी थी कर्नाटक भाषा में। फिर उसके बाद उसका संस्कृत हुआ, जो संस्कृत की लिपि थी कन्नड़, केशवर्णी नाम के ब्रह्मचारी हुए, उन्होंने वो कर्नाटक लिपि से कन्नड़ लिपि लिखने की स्टाइल, वो जिसको कहें ना
फॉन्ट
कहेंगे वो कन्नड़ और भाषा संस्कृत, ऐसे साउथ में वो ग्रंथ पढ़े थे।
जैसे कच्ची लोग बोलते गुजराती है
हाँ,
उनकी हाँ, अच्छी होती है, लेकिन
लिपि उनकी गुजराती थी ऐसे इस तरह से। अब ये नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने जो गोमड़सार लिखा था उसको चामुंड राय ने अपनी कर्नाटक भाषा में किया और उसको वो संस्कृत में लिखा था। पंडित टोडरमल जी जयपुर के थे,
300 साल,
ये 300 साल पहले की बात। तो अत्यंत बुद्धिमान, अनेक जैन शास्त्रों का बहुत अभ्यास, सभी कर्णान योग के वेत्ता ऐसे थे। धवला वगैरह जो बड़े बड़े ग्रंथ है तब वो दर्शन के लिए उपलब्ध थे, दूर से दर्शन कर सकते थे, कोई पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि वो जिनके हाथों में थे वो कोई उसको बाहर नहीं आने देते। फिर भी ये जो संस्कृत उनको मिली कोई टीका कन्नड़ में लिखी हुई उसके आधार से उन्होंने ढूंढारी भाषा वहां की हिंदी 300 साल पहले जयपुर की जो पुरानी हिंदी है उस भाषा में उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया। नॉट ओनली ट्रांसलेशन, उस पर भावार्थ लिखा।
इसलिए लिखा कि हाँ, लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आती थी, अभी भी हमें कहाँ संस्कृत को जाती है
प्राकृत संस्कृत, क्योंकि प्राकृत में गाथा है ओरिजिनल, उसका संस्कृत ट्रांसलेशन किया हुआ है और फिर उसका जो टीका वगैरह जो लिखी हुई है, परंतु उसका उन्होंने भावार्थ आदि करके बहुत सरल करके समझाया। ओरिजिनल ग्रंथ में जहां वहां बहुत गहरे गणित थे, वो पढ़ते थे तो कोई वहीं पर छोड़ के चला जाता था, आगे पढ़ने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी। तो उन्होंने क्या किया, वो गणित का गणित गणित अलग से उसी ऑर्डर से उसी क्रम से सारे गणित उन्होंने इकट्ठे अलग निकाले और उस जगह उन्होंने अपनी भाषा में सरल करके फॉर एग्जाम्पल करके स्मॉल फिगर्स लेके वहां बताया। स्मॉल फिगर्स लेके बताया उसको कहेंगे अंक संदृष्टि, और जो एक्चुअल फिगर्स थे अक्षसंख्या अनंत वगैरह उसके भी गणित कोड लैंग्वेज में सारे बनाए, उसको अलग से लिखा, उसका नाम उन्होंने रख दिया संदृष्टि अधिकार। यानी ये जीव कांड है इसमें ये 20 प्ररूप ना ही लिखे केवल, और उस संबंधी जो कोई गणित है उसको उन्होंने सेपरेट से अलग से लिखा। तो ये सारा जो ग्रंथ उन्होंने लिखा उस जमाने में, उसमें ये सारी बातें बहुत विस्तार से आई, उसका बहुत संक्षिप्तीकरण इसमें लिखा है। इसमें कोई गणित लिया ही नहीं है, ये गणित जो है वो दूसरा है। तो उसकी अभी मैंने जो मैंने कल बात की थी ना, हिंदी मैंने अनुवाद किया है, ये अनुवाद के ये दो बुक्स हुए,
एक ही दो पार्ट,
एक ही है वो, बहुत जाड़ा होता था इसलिए हमने उसको दो भागों में डिवाइड किया, तभी ये हिंदी में हो गई है। कहने का प्रयोजन है कि इसमें ये सारा बहुत विस्तार से वर्णन है, और अपनी अभी जो हम हिंदी बोलते हैं इसी भाषा में है, गणित भी समझा है, और बीच बीच में मेरी भाषा में मैंने विशेषार्थ भी बहुत सारा लिख दिया है, ताकि जिसको रुचि है इस विषय की वो पढ़ सके। अभी हम आगे बढ़ेंगे।
ये एक मिनट, ये 1100 करीबन पेजेस हैं इसमें, जिसमें दो भाग हमने बनाए हैं, और उसकी लागत मूल्य तो समझ लीजिए 350-350 है एक पुस्तक की, यानी दोनों के हमने वेचान, क्या बोलते हैं आप लोग, सेल प्राइस, नो डिस्काउंट, सेल प्राइस 125 रुपीज रखा है
दोनों के मिलकर।
यानी हम ये जो कोई सारा प्रयत्न कर रहे हैं तो ये तो जिनागम का प्रचार प्रसार करने के लिए ही कर रहे हैं। हमने किसी से भी एक नया पैसा, हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमारा वो प्रोजेक्ट है, आप कुछ तो भी लिखो, आपको कितना, 10, आपसे तो कम से कम 50 चाहिए, ऐसा हमने किसी को बोला नहीं।
नहीं, इसमें
हमने
तो हम
अपने स्वयं से पैसे लगाए, हमारे पास जो कुछ है उसमें हमने समर्पित किए और ये पुस्तक छापी है। हमारी इच्छा थी 1000 पुस्तक छापने की, लेकिन डिमांड इतनी रही कि हमने 1600 पुस्तक छापी है। अभी उसमें से समझ लो कि कुछ 25-30 पुस्तकें रह गई है वॉशिंगटन में, वहां 22 लोगों ने ऑर्डर दिए, $10 को हम दे रहे भेजने का खर्चा बर्चा उसमें
सब, सही आपके घर पर वहां को।
और इसके ऊपर सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो पुस्तक है वो कैसी पढ़नी चाहिए, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उसके लिए एक शिविर भी लिया गया था देवलाली
में। देवलाली में ना था, ऐसे बड़े बड़े चार्ज लेकर करके घर से बना के ले गए थे,
तो वो उसकी डीवीडी भी उपलब्ध है यहाँ पर,
वो विजुअल डीवीडी है उसकी,
देख सकते हैं आप। यानी ये तो बहन का कहना था कि आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दो लोगों को, तो उनको भी कोई ऐसी हो जाए इच्छा, ले सकते हैं। अब चलो,
हाँ देखो, तो अभी इसलिए मैंने पुस्तक है कि इसमें तो बहुत विस्तार से, वो विस्तार से तो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जहाँ कोई इंटरेस्टिंग बातें होगी ना इसमें से, इसके आधार से मैंने कल बात की थी ना, हमने 2 घंटे निगोद पर चर्चा की, तो फिर भी अधूरी रही, इस पुस्तक के आधार से बहुत कुछ समझाया। तो अभी हम यहाँ, हम इतने डिटेल में नहीं जाने वाले, अब यहाँ हम देखते हैं आपका है पेज नंबर 118 होगा शायद, 118। तो यहाँ तो योनियों के भेद देखे, देखो देह की अवगाहना के भेद के बारे में थोड़ा कुछ मैं बताऊंगी, फिर अपने पुस्तक पर आते हैं। अवगाहना का अर्थ है शरीर का साइज, देखिए चींटी का साइज इतना है और हाथी इतना बड़ा है। तो आत्मा का साइज क्या होता है, प्रदेशों का संकोच और विस्तार। आत्मा का जो सब्सटेंस है, द्रव्य है, जैसे हमने स्पंज का उदाहरण दिया था, आप थे तभी, हमने स्पंज को दबाया तो क्या हुआ, स्पंज का उतना रहा ना, उसका मैटर उतना रहा, फिर भी वो छोटे स्पेस में समा गया, और हमने छोड़ दिया तो बड़ा हो गया। तो ऐसे ही आत्मा क्या है, संकुचित होकर वो छोटे शरीर में उसके समा जाती है। तो हम उसको कहेंगे अवगाहना, देह की अवगाहना। छोटे देह में है तो जीव ने जो कोई कर्म जैसे बांधे वैसे उस पर्याय में आता है तो उसकी छोटी अवगाहना होती। हम हमारे घर में बालक पैदा होता है तो छोटा है ना अवगाहना, फिर वो बड़ा बड़ा होता है, उसकी अवगाहना बढ़ती है। तो ऐसे मिनिमम पॉसिबल देह किसका है, मिनिमम छोटे में छोटा, तो वो निगोद का है। अब निगोद में भी बहुत सारे अवगाहना के भेद है, तो उसमें से स्मॉलेस्ट पॉसिबल कौन है, होता है तो उसको भी कहते हैं सूक्ष्म निगोद। निगोद में भी दो टाइप है, सूक्ष्म और बादर। वो सूक्ष्म निगोद, तो सूक्ष्म निगोद सभी छोटे होते हैं तो कहते नहीं, सूक्ष्म निगोद में भी अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त, वो क्या है वो हम देखेंगे। तो सभी लब्धि अपर्याप्त नहीं, जो सीधी गति से मरकर आया है, विग्रह गति में हमने देखा पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर या नीचे जाता है, एक ही सिंगल समय में आया हुआ जीव, वो भी जन्म धारण करने के तीसरे समय में उसकी मिनिमम पॉसिबल अवगाहना होती है। ऐसे क्यों, क्या उसके बहुत रीजनिंग है, ये किसके होती है। और मैक्सिमम पॉसिबल अवगाहना किसकी हमने देखी थी, याद है? हाँ, स्वयंभू रमण समुद्र में जो महामत्स्य है, हजार योजन लंबा वगैरह वगैरह। तो अभी हम थोड़ा
ज्यादा अवगाहना तो जब केवली समुद्गत होता है तब होती है ना।
हमने देह की बात करी ना, अभी देह की अवगाहना के लिए, देह की जब समुद्गत होता है तो वो केवली समुद्गत आपने सुना होगा, तेरहवें गुण स्थान के एक अंतर्मूर्त बाकी रहता है, तब नाम गोत्र और वेदनीय कर्म की स्थिति ज्यादा रहती है और आयु कर्म की स्थिति कम है, सबको इक्वल करने के लिए वहां समुद्घात होता है। मूल शरीर में तो जीव है ही है, आत्मा के प्रदेश, और इन एडिशन वो पूरे लोकाकाश में फैल जाते, उसको कहेंगे केवली समुद्घात। मूल शरीर को नहीं छोड़ते, परंतु उनकी देह की अवगाहना उतनी है जैसे कोई सात हाथ का होगा, दस हाथ का होगा, या 500 धनुष का भी होगा, तो उसकी मूल अवगाहना तो उतनी है ना देह की अवगाहना। तो यहाँ जो हम साइज देख रहे हैं वो देह की अवगाहना की अपेक्षा देख रहे हैं। अवगाहना के भेद जब कहेंगे ना तो देह की मूल, देह की अवगाहना के भेद कहेंगे आप। ऐसे बहुत इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है, एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए अवगाहना के अनेक भेद है, एक एक प्रदेश से बढ़ते, प्रदेश कितना छोटा है। अब यहाँ कहते हैं कि एक इंद्रियों में सबसे बड़ी अवगाहना किसकी, हमने छोटी तो देखी, बड़ी किसकी है उसको जरा देखते हैं। तो एक इंद्रियों में स्वयंभू रमण द्वीप के मध्यवर्ती, ये स्वयंभू रमण समुद्र का नाम सुना है ना, देखो इस मध्य लोक में जो त्रस नाली है बीच के, एक राजू का एक राजू, उसमें सबसे बीच में हमारा जो द्वीप जम्बू द्वीप है, जो 1,00,000 योजन उसका डायमीटर है, उसके बाहर समुद्र है इस तरह से ब्रॉड, कितना ब्रॉड है तो 2,00,000 योजन, उसके आगे द्वीप है वो 4,00,000 योजन, वो भी इस तरह से वो कंकणाकृति है। तो ऐसे करते करते असंख्या द्वीप समुद्र के बाद लास्ट वाला जो है स्वयंभू रमण समुद्र है, उसके पहले वाला स्वयंभू रमण द्वीप है, उसके बीचों बीच एक पर्वत है उसका नाम है स्वयंप्रभ पर्वत, उसके आउटर साइड में वो जो द्वीप का आउटर हाफ है उसमें कर्मभूमि, वहां कर्मभूमि का क्षेत्र है क्योंकि वहां भी ये विकलेंद्रिय भी है, वहां पंचेंद्रिय भी है, त्रिवेंच मनुष्य नहीं है, मनुष्य तो ढाई द्वीप में ही होते हैं। तो वहां एक कमल है, कितना है तो 1,000 योजन लंबा वाला कमल है, वो सबसे बड़ी अवगाहना एक इंद्रियों की, 1 योजन चौड़ा है। अब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है वो हम नहीं देखेंगे। फिर कहते हैं द्विंद्रियों में कितनी है, तो द्विंद्रियों में शंख है, तो शंख कितना है तो 12 योजन लंबा वो शंख है द्विंद्रियों में,
वो भी स्वयंभू रमण समुद्र,
हाँ, वो द्वीप में है,
द्वीप है
समुद्र में, इस द्वीप में ऐसा क्योंकि इस शंख तो समुद्र में होते हैं। हाँ, तीन्द्रियों में ये रक्त बिच्छू, लाल बिच्छू,
रेड स्कॉर्पियन,
वहां भी उसका बहुत लंबा है, उसका यानी 3/4 भाग योजन इतना लंबा है। चतुर इंद्रियों में वही स्वयंभूरम रमण द्वीप में उसका 1 योजन लंबा है, जिसको कहते हैं हम भ्रमर। पंचेंद्रियों में महामत्स्य हमने देखा ही था, इस तरह से कुछ अधिक से अधिक अवगाहना, वैसे कम से कम अवगाहना वाले भी बहुत सारे यहाँ इसमें भेद बताए हैं, अभी हम उसमें नहीं जाते हुए। कुल के भेद भी आपने देखा होगा ना, ये कितने कुल है, इतने करोड़ कोड़ी कुल होते हैं, हम पूजा में वगैरह तो कहते हैं, तो वैसे ये कुल के भेद भी वहाँ पाए जाते हैं। अब हम जो सामान्य से 14 जीव समास है उसकी बात यहाँ करेंगे।
कुल माने अपन जो कुल बोलते हैं वो नहीं ना।
हाँ देखो देखो, एक कुल और जाति में क्या भेद है, हम कुल किसको कहते हैं, कुल यानी पिता का जो होता है उसको कुल कहेंगे, और माता का जो मातुल मामा वगैरह है उसको कहेंगे जाति, गोत्र भी कहेंगे, वो गोत्र अलग होता है एक्चुअली, परंतु वो बात यहाँ नहीं है। देखो यहाँ तो योनि को जाति कहते हैं, यानी उपजने के स्थान है उसको योनि कहते हैं, वहां का जो पुद्गल स्कंधों के भेद है ना, जहां जीव उत्पन्न होता है वहां के जो पुद्गल स्कंध है, उन पुद्गल स्कंधों के जो वेरिएशंस है उसको योनि कहेंगे। और कुल किसको कहेंगे कि जिन पुद्गलों के द्वारा शरीर उत्पन्न होता है उसको कुल कहेंगे। तो ये तो अपने ज्ञान का विषय है, जितना भगवान कहेंगे उतना ही हम कहेंगे, इतने कुल होते हैं, इतनी योनि होती है, ख्याल है ना। अब हम ये जीव समास जो 14 है उसकी बात यहाँ करेंगे।
उत्पन्न होने के स्थान पर जो पुद्गल है,
पुद्गल स्कंध, वहाँ जैसे हमने
कहा वो शीत स्कंध है, वो योनि है,
वो योनि। जैसे देखो नरकों में क्या कहते हैं, कहीं तो बहुत उष्ण है और कहीं शीत है, तो वहाँ कहेंगे वहाँ की उष्ण योनि है, क्योंकि वहाँ का एटमोस्फियर उष्ण है, वहाँ के पुद्गल स्कंध है ना, वहाँ के एटमोस्फियर।
और जो पुद्गलों से शरीर बनता है
वो कुल है। ये जरा बेटा इतना पलटाना है इसको पीछे, अभी ये सामान्य से जो 14 भेद है जीवों के, इन सभी पर्यायों में जीव है कहीं ना कहीं, प्रत्येक में, उसको हम देखेंगे। अभी 120 पृष्ठ है मेरे में, आपने 118 होगा, ये दूसरा पैराग्राफ है, जीव के संयोग में जो देह है, मिला? हाँ मिला बहन। हाँ, जीव के संयोग में जो देह है और उसके ज्ञान का जो उघाड़ है, जिसको हम क्षोभम ज्ञान कहते, कितने ज्ञान है, एक इंद्रिय संबंधी है, एक द्विंद्रिय संबंधी है, तो उसमें शरीर भी आया और उसका ज्ञान भी है, दोनों है ना, तो उसकी अपेक्षा से यानी इंद्रियों की अपेक्षा से जीवों के भेद किए है। यहाँ द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय यानी ज्ञान का उघाड़ दोनों गर्भित है, द्रव्येंद्रिय यानी शरीर में जो इंद्रियों की रचना हुई है उसकी भी बात है, क्योंकि जितना जीव का ज्ञान का क्षोभम है उतनी इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। आप कहेंगे कोई अंधा है, कोई अंधा मनुष्य है, वो कितने इंद्रिय वाला है, अंधा मनुष्य, पंचेंद्रिय मनुष्य तो पंचेंद्रिय होता है, वो बाह्य द्रव्येंद्रियों में कोई डिफेक्ट हो तो भी उसका क्षोभम तो पांचों इंद्रियों के द्वारा जानने जितना है। अब वहाँ कोई डिफॉर्मिटी हुई है इसलिए क्षोभम गया, ऐसा नहीं होता, वो तो द्रव्येंद्रिय है ना, बाह्य द्रव्येंद्रिय, उसमें कुछ बिगाड़ हुआ है। जैसे हमारा मोतिया हुआ तो क्या होता है, अंदर शक्ति है कि नहीं, यदि शक्ति नहीं होती तो ऑपरेशन के बाद ठीक नहीं होता, ऑपरेशन करने पर लेंस चेंज करने पर दिखाई देता है, इसका अर्थ क्या है, अंदर शक्ति पड़ी है वहां पर। तो ऐसे ही मनुष्य कोई भी हो, अंधा हो, बहरा हो, जो कोई हो, तो वो पंचेंद्रिय वाला है। अब यहां देखते हैं, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीव पाए जाते हैं, उनमें से अभी इनमें भेद देखेंगे। एकेंद्रिय में यहाँ दो भेद लिखे, एकेंद्रिय में सूक्ष्म है और एकेंद्रिय में बादर भी है। द्विंद्रिय आदि में क्या होगा,
सूक्ष्म बादर,
बादर नहीं, सब बादर ही, बहुत अच्छा। द्विंद्रिय तीन्द्रिय बादर क्या होता है वो देखेंगे, द्विंद्रिय तीन्द्रिय वगैरह सब बादर ही है, सूक्ष्म और बादर भेद कहाँ है, एकेंद्रिय, इसलिए एकेंद्रिय में दो वैरायटी, एक सूक्ष्म एकेंद्रिय और एक बादर एकेंद्रिय। फिर द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसे हमने यहाँ पंचेंद्रिय के भी दो भेद लिखे, कौन से लिखे बेन? असंगी पंचेंद्रिय यानी मन रहित और मन सहित। देखो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जीव पाए जाते हैं, उनमें से एक इंद्रिय में सूक्ष्म और बादर दो भेद है, और पंचेंद्रियों में संगी यानी मन सहित और असंगी यानी मन रहित दो भेद है। कितने हुए टोटल बेटा उजाला? हाउ मेनी? ये जस्ट काउंट, एक इंद्रिय टू, दिस इज थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। हाउ मेनी आर देयर? सेवन। या तो इनकी संख्या सात हुई। अब हरेक में पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो भेद है, सेवन इंटू टू फोर्टीन। सभी संसारी जीव इन किसी न किसी ये चौदह भेदों में पाए जाते हैं, कोई भी। अब जो आपको दिखाई दे रही बाहर वनस्पति जो है, वो इसमें से कौन सा भेद है कोई बता सकेगा? यू कैन ट्राई फर्स्ट। सूक्ष्म यू कैन नॉट सी, तो वो वनस्पति है वो कितने इंद्रिय वाला है? यूनिसेंसरी प्लांट्स। उनको देखो आपके घर में वो है ना, वो बांबू का छोटा है प्लांट, उसमें खट्टा छाछ डालेगी उसको समझेगा कि नहीं समझेगा? तो क्या समझेगा? वो ठंडा है क्या गर्म है उतना समझेगा, है ना? शीतोष्ण का ज्ञान होता है उनको, स्निग्ध रुक्ष का ज्ञान होगा, स्पर्शनेन्द्रिय है, स्पर्शनेन्द्रिय से क्या जानेंगे गर्म है क्या ठंडा है इतना जानेंगे, परंतु वो खट्टा है क्या खारा है क्या वो नहीं जानेंगे, वो स्पर्शनेन्द्रिय का ज्ञान है, एक स्पर्शनेन्द्रिय। जब हम सूक्ष्म बादर की चर्चा करेंगे तो ये और ज्यादा क्लियरिटी बढ़ेगी। अभी तो हम केवल ये सात भेद देख रहे हैं, आप ये सात भेदों को आपको रिपीट करना है क्योंकि अपना भी समय समाप्त तो होने को आया। कौन रिपीट करेंगे? सात भेद और फिर उसके पर्याप्त पर्याप्त कहकर चौदह कहने। Who wants to try? बोलो, कितना आसान है। हाँ बोलो बोलो।
एक इंद्रिय,
हाँ
सूक्ष्म,
हाँ
एक इंद्रिय बादर,
बहुत अच्छा,
द्वेंद्रिय,
हाँ
तेंद्रिय,
हाँ
चौरेन्द्रिय,
हाँ
पंचेन्द्रिय असंगी, पंचेन्द्रिय
असंगी, हाँ और
इनके
बहुत अच्छा चौदह भेद हुए। कौन रिपीट करेंगे? अभी रिपीट करना है तो सबका याद हो जाता है, घर में जाके हमें कहाँ फुर्सत है फिर पढ़ने को, है ना? यहीं पर याद करना है। आप कहेंगे?
एक इंद्रिय सूक्ष्म, एक इंद्रिय बादर,
हाँ
द्वेंद्रिय,
हाँ
द्वेंद्रिय चौरेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय असंगी,
हाँ
पंचेन्द्रिय असंगी,
हाँ
और पर्याप्त और
अपर्याप्त। बहुत अच्छा, देखो कितना आसान है ना, बहुत अच्छा। नहीं नहीं पढ़ना है, क्यों है? क्योंकि पढ़कर ही करना है ना पक्का। हाँ आप बहन जी आप बोलना। हाँ हाँ हाँ, हाँ आप।
अच्छा एक इंद्रिय, एक इंद्रिय में दो सूक्ष्म पादर,
हाँ
द्वेन्द्रिय,
हाँ
तेन्द्रिय,
चतुरेन्द्रिय,
हाँ पंचेन्द्रिय, उसमें संगनी असंगनी,
संगी असंगनी,
और सबके दो दो भेद पर्याप्त।
बहुत अच्छा, ये हमारे चौदह भेद हुए। अब इन चौदह भेदों का जो स्वरूप है, जो बादर क्या होता है, सूक्ष्म क्या होता है, कौन कौन से इंद्रियों के हम एक दो एग्जाम्पल्स भी लेंगे, कौन कौन से जीव उसमें पाए जाते हैं, इस सब की चर्चा हम दोपहर में करेंगे। बोलो चौबीसो भगवान की।